गलातियों गलातियों अध्याय एक। पौलुस यीशु मसीह का प्रेरित, जिन्हें परमेश्वर पिता ने मरे हुओं में से जिलाया था, परमेश्वर पिता के द्वारा भेजा गया है, मनुष्यों द्वारा नहीं। यह पत्र गलातिया की उन सभी मंडलियों के लिए उन भाइयों की ओर से भी है जो मेरे साथ हैं। हम सभी की ओर से तुम्हें स्वर्गिक पिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति मिले। यीशु, जिन्होंने हमारे पिता की इच्छा के आधार पर हमारे अपराधों के लिए अपने आप को दिया ताकि हमें इस बुरे संसार से छुड़ा लें, उन्हीं को प्रशंसा, सम्मान और स्तुति सदा मिलती रहे, ऐसा ही हो। मुझे आश्चर्य यह है कि इतनी जल्दी तुम यीशु मसीह से, जिन्होंने अपनी बड़ी कृपा से तुम्हें मुक्ति दी थी, मुड़कर एक अलग तरह की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हो। वह सही सोच नहीं है, लेकिन कुछ लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं और मसीह के आनंद के समाचार को भ्रष्ट कर रहे हैं। यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत उस अच्छे समाचार के अलावा कोई और संदेश सुनाए तो उसे सजा मिले। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, अब एक बार फिर कहता हूँ, यदि मेरे सुनाए हुए सुसमाचार से हटकर कोई सुसमाचार सुनाता है तो वह सजा पाए। क्या मैं मनुष्य से प्रशंसा चाहता हूँ या जगत के स्वामी से? क्या मैं मनुष्यों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि यदि मैं अभी तक मनुष्यों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं मसीह का सेवक हो ही नहीं सकता। लेकिन भाइयों बहनों, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस सुसमाचार को मैंने सुनाया था वह मनुष्य का नहीं है, इसलिए कि मैंने उसे मनुष्य से हासिल नहीं किया, न ही मुझे किसी ने सिखाया था, किंतु मैंने इसे यीशु मसीह से सीखा था। इसलिए कि यहूदी मत में मेरे आचार व्यवहार के विषय तुमने सुना है कि मैंने असीमित रूप से परमेश्वर के चर्च को सताया और नष्ट करने का प्रयत्न किया। मेरे अपने देश में और बहुत से लोगों की तुलना में जो यहूदी मत के थे, मैं आगे बढ़ चुका था। अपने पूर्वजों की परंपराओं से अधिक जोश उनकी तुलना में मुझ में था। किंतु जब परमेश्वर, जिन्होंने मुझे अपनी बड़ी दया से माता के गर्भ से बुलाया था, जिससे अपने बेटे को मुझ में प्रकट करे ताकि मैं गैर यहूदियों में यह संदेश दूं, तब न तो मैंने अपनी इच्छा की परवाह की, न ही मेरे से पहले नियुक्त किए गए प्रेरितों से सलाह ली, किंतु सीधे अरब चला गया और फिर से वापस दमिश्क आ गया। 3 साल बाद मैं पतरस से मिलने यरूशलेम गया और 15 दिन उसके साथ रहा। वहां यीशु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी मुलाकात यीशु के किसी और प्रेरित से नहीं हुई। यह सब झूठ नहीं, मैं परमेश्वर को उपस्थित जानकर लिख रहा हूँ। इसके पश्चात मैं सीरिया और किलकिया इलाके में आया, किंतु मसीह में यहूदिया के चर्चों ने मेरा चेहरा अब तक कभी नहीं देखा था। उन्होंने यह केवल सुना ही था कि जो हमें पहले सताया करता था, अब वह स्वयं उस संदेश को सुना रहा है जिसे नाश करने की कोशिश किया करता था। वे मुझ में आए बदलाव के लिए परमेश्वर की बड़ाई किया करते थे। गलातियों अध्याय 2। 14 वर्ष के बाद मैं तीतुस और बरनबास के साथ फिर से यरूशलेम गया। स्वर्गिक मार्गदर्शन पाने के बाद मैंने ऐसा किया था ताकि मैं उनके सामने उस सुसमाचार को रख सकूं जिसे मैंने गैर यहूदियों को सुनाया था। ऐसा मैंने आदरणीय लोगों के साथ अकेले में किया ताकि मेरी दौड़ बेकार न ठहरे। यहां तक कि तीतुस, जो यूनानी था और मेरे साथ था, खतना कराने के लिए मजबूर किया गया। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जिन्हें गुप्त तरीके से लाया गया था। वे मसीह यीशु में जो हमारी आजादी थी उससे हमें हटाने के लिए लुके छुपे जासूसी कर रहे थे। हमने उनके हाथों में एक क्षण के लिए भी अपने आप को सुपुर्द नहीं किया ताकि खुशी के संदेश की सच्चाई तुम्हारे साथ बनी रहे। जो लोग कुछ समझे जाते थे उनसे मुझे कुछ भी हासिल न हुआ। वे कैसे थे इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर किसी की भी तरफदारी नहीं करते हैं। इसके विपरीत उन्होंने देखा कि खतना रहित लोगों को खुशी का संदेश देने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, जिस तरह से खतना वालों की जिम्मेदारी पत्रस को दी गई थी। जो पवित्र आत्मा पत्रस की प्रेरिताई सेवा में कार्य कर रहा था, वही प्रभावशाली तरीके से गैर यहूदियों में मेरे द्वारा कार्य कर रहा था। याकूब, कैफा और यूहन्ना, जो खंबे समझे जाते थे, जब उन्होंने मुझे प्राप्त अनुग्रह को देखा, तब बरनबास और मुझे सहभागिता का दाहिना हाथ दिया। उन्होंने यह सलाह मान ली कि हम गैर यहूदियों के पास जाएं और वे यहूदियों के पास, परंतु वे चाहते थे कि हम गरीबों का ध्यान रखें। मैं भी वही करने के लिए तैयार था। जब पत्रस अंताकिया आया, मैंने उसके सामने उसका विरोध किया, क्योंकि वह दोषी था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह गैर यहूदियों के साथ खाना खाता था। किंतु जब वे वहां पहुंचे, खतना वालों के डर से उसने अपने आप को अलग कर लिया। दूसरे यहूदी भी उसके साथ धोखे में पड़ गए, यहां तक कि बरनबास भी उसी कपट में बह गया। जब मैंने ये देखा कि वे सच्चे संदेश के सत्य के अनुसार बर्ताव नहीं कर रहे हैं, सबके सामने मैंने पत्रस से कहा, यहूदी होकर यदि तुम गैर यहूदियों की तरह जियोगे, यहूदियों के समान नहीं, तो तुम और गैर यहूदियों को यहूदियों की तरह जीने के लिए क्यों मजबूर करते हो? हालांकि हम जन्म से यहूदी हैं और गैर यहूदियों में से नहीं, तो भी यह जान करके इंसान नियम शास्त्र के अनुसार काम करने से नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास लाने से धर्मी ठहरता है। हमने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया ताकि हम भी यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहराए जाएं, न कि नियम शास्त्र के अनुसार, क्योंकि नियम शास्त्र के अनुसार करने वाला कोई भी इंसान सिद्ध साबित नहीं होगा। हम जो मसीह में धर्मी और परमेश्वर के सामने पूर्ण ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनहगार निकले, तो क्या मसीह ने हमें गुनाह करने के लिए उभारा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया, अगर उसे फिर बनाऊं, तो खुद मैं ही परमेश्वर के कानून को तोड़ने वाला हुआ, क्योंकि मैं नियम शास्त्र ही के द्वारा मर गया ताकि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए इस देह में जो जीवन मैं जी रहा हूं, वह परमेश्वर के बेटे यीशु की विश्वास योग्यता की वजह से है, जिन्होंने मुझसे प्यार किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मैं परमेश्वर की असीमित कृपा को नजरअंदाज नहीं करता हूं, क्योंकि अगर नियम शास्त्र से धर्मी ठहराया जाना होता, तो मसीह का मरना बेकार हुआ होता। गलातियों अध्याय 3। हे मूर्ख गलातिया वासियों, तुम्हें किसने मोह लिया है कि तुम सत्य को न मानो? यीशु बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने ही क्रूस पर चढ़ाए हुए दिखाए गए थे। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा तुमने नियम शास्त्र का पालन करने से पाया था या विश्वास से सुनने के द्वारा? क्या तुम इतने मूर्ख हो कि पवित्र आत्मा से शुरुआत करने के बाद अब क्या अपनी इच्छा के अनुसार करने से सिद्धता को प्राप्त कर सकोगे? क्या तुमने इतना सब कुछ बेकार ही सहा? यदि हाँ, तो सब व्यर्थ ठहरा। जो तुम्हें पवित्र आत्मा देते हैं और तुम्हारे बीच में अद्भुत कार्य करते हैं, क्या वो नियम शास्त्र के आधार पर करने के कारण करते हैं या तुम्हारे विश्वास से सुनने के कारण? जैसा अब्राहम ने भरोसा किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, इसलिए ये समझ लो कि वे जो विश्वास करते हैं वही अब्राहम के बेटे बेटियां हैं। यह बात ध्यान में रखकर कि विश्वास द्वारा गैर यहूदियों को सिद्ध या सजा मुक्त ठहराया जाएगा, सुसमाचार की पहले से ही यह कहते हुए घोषणा की थी,
सभी राष्ट्र तुम में आशीष पाएंगे।
इसलिए जिनके पास विश्वास है, वे विश्वास करने वाले अब्राहम के साथ आशीषित हैं। इसलिए कि जितने नियम शास्त्र के कामों पर निर्भर हैं, वे सजा के अधीन हैं, क्योंकि यह लिखा है,
हर एक वजन दंडित है जो नियम शास्त्र में लिखी हर एक बात में बना नहीं रहता है।
परंतु यह स्पष्ट है कि परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी इसलिए खरा और निर्दोष नहीं ठहरता क्योंकि वह नियमों का पालन करता है, इसलिए कि धर्मी ठहराया हुआ व्यक्ति विश्वास से जीवित रहेगा। नियम शास्त्र का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, किंतु
जो व्यक्ति उनका पालन करता है उनके द्वारा उम्र भर सुख का स्वाद चखेगा।
मसीह ने हमें नियम शास्त्र के शाप से आजाद किया है, इसलिए कि लिखा है कि
प्रत्येक वह व्यक्ति जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है शापित है,
ताकि अब्राहम की आशीष यीशु द्वारा गैर यहूदियों तक पहुंचे, जिससे हम विश्वास द्वारा पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा पाएं। भाइयों बहनों, मैं लोगों की जीवन शैली की बात करता हूं। एक बार जब मनुष्य द्वारा बांधी वाचा की पुष्टि हो जाती है, कोई भी उसे खारिज नहीं करता, न ही उसमें कुछ जोड़ता है। अब्राहम और उसके वंश से प्रतिज्ञाएं की गई थी। यहां वंशों से नहीं लिखा है, किंतु तुम्हारे वंश से, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जो मसीह है। मैं ये कहता हूं कि नियम शास्त्र जो 430 वर्ष बाद दिया गया, वह मसीह में पहले से सिद्ध किया गया ताकि प्रतिज्ञा सच ठहरे। इसलिए कि यदि विरासत नियम शास्त्र से मिलती है, तो यह प्रतिज्ञा पर आधारित नहीं हुई, परंतु परमेश्वर ने उसे अब्राहम को प्रतिज्ञा द्वारा दिया। फिर नियम शास्त्र से क्या लाभ है, जब तक वह वंश न आ जाए जिससे प्रतिज्ञा की गई थी। यह अपराधों के कारण बाद में जोड़ी गई थी। यह मध्यस्थ और स्वर्गदूतों द्वारा निर्धारित की गई थी। मध्यस्थ एक ही पक्ष के लिए नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा है। तो क्या नियम शास्त्र परमेश्वर के वायदों के विरोध में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि ऐसा नियम शास्त्र दिया जाता जो जीवन दे सकता, तो धार्मिकता नियमों आज्ञाओं के पालन करने से मिलती। वचन ने हर एक को शापित किया है जो पाप में है, ताकि जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह पर विश्वास के फल स्वरूप आती है, उन्हें दी जा सके जो विश्वास करते हैं। लेकिन इसके पहले के विश्वास आए, हमें नियम शास्त्र के अधीन रखा गया था, ताकि प्रकट होने वाले विश्वास के प्रकट होने तक हम उसी की अधीनता में रहें। इसलिए नियम शास्त्र हमें मसीह तक लाने के लिए शिक्षक ठहरा, जिससे हमें विश्वास के आधार पर धर्मी ठहराया जा सके। किंतु अब क्योंकि विश्वास आ पहुंचा है, हम शिक्षक के अधीन न रहे। यीशु पर विश्वास करने से तुम सब परमेश्वर के संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा पाया है, उन्होंने मसीह को ओढ़ लिया है। अब न कोई यहूदी है न गैर यहूदी, गुलाम और आजाद में अंतर नहीं, न ही कोई नर या नारी है, यीशु मसीह में तुम सभी समान हो। यदि वचन के अनुसार तुम मसीह के हो, तो अब्राहम का वंश और मीरास के अधिकारी हो। गलातियों अध्याय 4। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक वारिसदार नाबालिग, जिसका सब कुछ पर अधिकार है, गुलाम से फर्क नहीं है। पिता द्वारा नियुक्त समय तक वह निगरानी रखने वाले और प्रबंधक के अधीन है। यहां तक कि हम अपने बचपन के समय से इस संसार की नींव की वस्तुओं की गुलामी में थे, किंतु जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने स्त्री के द्वारा अपने पुत्र को भेजा, जो नियम की अधीनता में उत्पन्न हुआ था, ताकि जो लोग उस नियम की पाबंदी में थे, उन्हें अधिकार प्राप्त संतान की तरह गोद लिया जा सके। इसलिए कि तुम पिता की संतान ठहरे, उन्होंने हमारे भीतर अपने बेटे की आत्मा को भेज दिया, जो पिता कहकर पुकारता है। इसलिए अब तुम गुलाम नहीं, किंतु बेटे बेटी हो, और यदि बेटे बेटी हो, तो मसीह के द्वारा वारिसदार भी। परंतु एक समय जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो स्वभाव से उनके गुलाम थे जो परमेश्वर नहीं थे। अब जबकि तुमने परमेश्वर को जान लिया है, या उन्होंने तुम्हें जान लिया है, यह क्या है कि तुम उन कमजोर और शुरुआत की बातों की चाह करके फिर से उनकी गुलामी में जा रहे हो। तुम दिनों, महीनों और अलग अलग समयों को मानने वाले बन गए हो। मुझे ये डर है कि जो मेहनत मैंने तुम्हारे लिए की है, वो बेकार न जाए। भाइयों बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जैसा मैं तुम्हारे समान बना, तुम भी मेरे समान बन जाओ। तुमने किसी भी तरह से मेरा कुछ नुकसान नहीं किया है। तुम ये जानते हो कि शारीरिक कमजोरी की वजह से मैंने पहले तुम्हें सुसंदेश दिया था। अपनी देह में मुझे जिस कमजोरी को सहना पड़ा, उसे न ही तुमने तुच्छ जाना न खिल्ली उड़ाई, परंतु मुझे परमेश्वर के स्वर्गदूत के रूप में स्वीकार किया, यहां तक कि मुझे मसीह यीशु के समान समझा। जिस आशीष के विषय तुमने कहा, वह सब कहां है? इसलिए कि मैंने तुम्हारे बारे में गवाही दी थी कि यदि संभव होता तो तुमने अपनी आंखों को निकाल कर दे दिया होता। क्या अब मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, वे तुम्हें फुसला कर तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी अच्छे उद्देश्य से नहीं। हाँ, वे तुम्हें हमसे अलग करना मांगते हैं ताकि तुम बड़ी उमंग से उनकी मानने लगो। ये भला है कि किसी अच्छी बात में जोश सदा बना रहे, न केवल तब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे छोटे बच्चों, जब तक कि मसीह तुम में न बन जाए, तब तक मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे साथ रहूं और अपने बोलने के तरीके को बदलूं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय उलझन में हूँ। मुझे बताओ, तुम जो नियम शास्त्र का पालन करना चाहते हो, क्या नियम शास्त्र की नहीं सुनते? क्योंकि यह लिखा है कि अब्राहम के दो बेटे थे, एक उसकी दासी से और दूसरा उसकी पत्नी से। शरीर की इच्छा से जो बेटा दासी से उत्पन्न हुआ, वह अब्राहम का स्वयं का फैसला था, लेकिन जो उसकी पत्नी से उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर से मिले हुए वायदे के कारण था। ये बातें एक प्रतीक है, इसलिए कि ये दो वाचाएं हैं, एक सीने पर्वत से है जो गुलामी उत्पन्न करती है, यह हाजिरा है। इसलिए कि यह हाजिरा अरब में सीने पहाड़ है और वर्तमान में यरूशलेम को दिखाती है जो अपने बच्चों के साथ गुलामी में है, किंतु यरूशलेम जो ऊपर है आजाद है और हम सब की माँ है, क्योंकि लिखा है,
हे बांझ, तुम जो बच्चे नहीं पैदा करती हो, तुम जिसे प्रसव की पीड़ा नहीं है, चिल्लाओ, क्योंकि छोड़ी हुई की संतान सुहागिन की संतान से अधिक है।
अब भाइयों बहनों, हम प्रतिज्ञा की संतान हैं। जिस तरह से जो देह की इच्छा से उत्पन्न हुआ था, आत्मा से जन्मे हुए को सताता था, वैसा आज भी है। बाइबल क्या कहती है? वो ये कि गुलाम स्त्री और उसके बेटे को निकाल दो, क्योंकि गुलाम स्त्री का बेटा आजाद स्त्री के बेटे के साथ मीरास का हकदार नहीं होगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम गुलाम स्त्री के बच्चे नहीं हैं, लेकिन आजाद स्त्री के हैं। गलातियों अध्याय 5। जिस आजादी के लिए मसीह ने हमें आजाद किया है, उसमें मजबूती से बने रहो। गुलामी के बंधन में बंधे रहना स्वीकार न करो। मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि तुम खतना कराओगे तो मसीह से कोई फायदा नहीं होगा। मैं गंभीरता से हर व्यक्ति के सामने ऐलान करता हूं कि जो खतना करवाता है, उसे सभी धार्मिक नियमों को मानना पड़ेगा। तुम जो नियम शास्त्र के द्वारा खरे या सिद्ध ठहराए जाना चाहते हो, मसीह तुमसे दूर हो गए हैं और तुम अति महान कृपा से गिर चुके हो। आत्मा के द्वारा हम उद्धार के सभी फायदों का इंतजार करते हैं जो विश्वास से है। यीशु मसीह में न खतनाहीन कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन सिर्फ विश्वास जो प्रेम द्वारा प्रेरित है। तुम अच्छी दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया ताकि तुम सत्य को न मानो? ये शिक्षा तुम्हें उनसे नहीं मिलती है जिन्होंने तुम्हें बुलाया है। थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीरा कर देता है। मुझे यीशु में तुम पर भरोसा है कि तुम किसी और शिक्षा को नहीं अपनाओगे। जो तुम्हें परेशान कर रहा है, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, दंड पाएगा। भाइयों बहनों, जहां तक मेरा सवाल है, यदि मैं अभी भी खतने का संदेश देता हूं, तो मैं सताव क्यों सह रहा हूं? यदि ऐसा है तो क्रूस से ठोकर लगने की बात ही नहीं रही। जो तुम्हें परेशान करते हैं, अच्छा होता कि वे अपने अंग को ही काट डालते। भाइयों बहनों, तुम्हें आजादी के लिए अलग किया गया है, किंतु इस आजादी को अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करने के लिए इस्तेमाल मत करो। इसके बजाय प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। पूरे नियम शास्त्र का एक निचोड़ यह है,
तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो।
किंतु यदि तुम एक दूसरे को फाड़ खाते हो, तो सतर्क रहो कि एक दूसरे को खत्म न कर डालो। इसलिए मैं कहता हूं, आत्मा के द्वारा जीवन जियो, तब तुम अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं जियोगे, क्योंकि पुराना स्वभाव पवित्र आत्मा के विरोध में इच्छा रखता है और पवित्र आत्मा पुराने स्वभाव के विरोध में। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ताकि तुम वह सब न कर सको जो तुम चाहते हो। किंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से जीवन बिताते हो, तो तुम नियम शास्त्र की अधीनता में नहीं हो। पुराने स्वभाव के कार्य ये सब हैं: व्यभिचार, लुचपन, अशुद्धता, दुष्टता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, नफरत, झगड़े, गलत शिक्षाएं, ईर्ष्या, क्रोध, हत्या, मतवालापन, डाह, लीला क्रीड़ा और इस तरह के अनेकों काम हैं, जिनके बारे में मैं पहले से ही बता चुका हूं। ऐसा करने वाले लोग परमेश्वर के राज के हिस्सेदार नहीं हो पाएंगे, किंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, खुशी, शांति, धीरज, सहनशीलता, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इन सब के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। जो मसीह के हो चुके हैं, उन्होंने अभिलाषाओं और इच्छाओं सहित पुराने स्वभाव को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम पवित्र आत्मा में जीवित हैं, तो उसी के अनुसार हमारा जीवन जिया जाए। हम झूठी प्रशंसा की चाह रखकर एक दूसरे को न चिढ़ाएं और न ही एक दूसरे से जलें। गलातियों अध्याय 6। भाइयों बहनों, कोई भी व्यक्ति पाप में गिर सकता है। तुम आत्मिक लोगों को चाहिए कि तुम भी सतर्क रहो, ताकि पाप में न गिरो। पाप में फंस जाने वाले व्यक्ति को नम्रता से समझाओ। एक दूसरे का बोझ उठाकर मसीह का नियम पूरा करो। यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि वह कुछ है, जबकि वह कुछ नहीं है, तो वह स्वयं को धोखा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने काम को जांचे और करके दिखाए, तब उसे किसी दूसरे के काम में नहीं, लेकिन अपने काम में खुश होने का मौका मिलेगा। क्योंकि हर एक को अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी करनी है। जो दूसरों से वचन की शिक्षा पाता है, वह सभी अच्छी वस्तुओं को उनके साथ बांटे। धोखे में मत रहना। परमेश्वर को मजाक में नहीं लिया जा सकता। मनुष्य जो कुछ भी बोता है, वही काटेगा भी। जो अपने मन के अनुसार जिएगा, वह बर्बादी की फसल काटेगा। जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलेगा, वह पवित्र आत्मा से अनंत कालिक फसल पाएगा। भलाई करने में हम थक न जाएं, क्योंकि यदि हम हिम्मत न हारें, तो निश्चित समय पर फसल देखेंगे। इसलिए जब हमें अवसर मिलता है, सबके साथ भला व्यवहार करें, विशेषकर उनके साथ जो विश्वास के घराने के हैं। मैंने अपने हाथों से बड़े बड़े अक्षरों में किस तरह लिखा है, यह देखो। जो लोग खतना करना चाहते हैं, वे मसीह के क्रूस के कारण आने वाले सताव से बचना चाहते हैं। जो लोग खतना करवाते हैं, वे भी नियम शास्त्र का पालन नहीं करते हैं। वे तुम्हारा खतना इसलिए करवाना चाहते हैं, ताकि तुम्हारे कारण घमंड कर सकें। लेकिन परमेश्वर करे कि मैं यीशु मसीह के क्रूस को छोड़कर किसी और बात का घमंड न करूं, जिसके कारण मेरे लिए संसार क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और मैं संसार के लिए। इसलिए कि मसीह में न खतना और न खतना रहित का कुछ अर्थ है, किंतु एक नई सृष्टि। उन लोगों को और शांति और अनुग्रह मिले जो इस नियम पर चलते हैं, परमेश्वर के इसराइल को भी। अब से कोई मुझे परेशान न करे, क्योंकि मैं अपनी देह पर यीशु मसीह के दागों को सहता हूं। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह की असीम कृपा तुम्हारी आत्माओं के साथ हो, ऐसा होता रहे।